शांति, ओम शांति। आज रविवार है और हम सभी अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। बाप दादा के सामने कौन से बच्चे होंगे, बाप दादा किन बच्चों को देख रहे हैं? हमेशा बाबा जब ये कहते हैं हम बाबा किसको देख रहे हैं, तो उनकी महिमा तो गाते ही हैं। तो आज बाप दादा संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। है हम सभी संतुष्ट मणियां? जो समझते हैं मैं संतुष्ट मणि हूं वो हाथ उठाएं। अच्छा, सभी? अच्छा, वेरी गुड। तो बाप दादा देख रहे हैं, पर बाप दादा ने कहा चलो कोई बात नहीं, 80% तो है, सभी 100% है। जो समझ से 100% संतुष्ट मणि है वो हाथ उठाएं। अभी थोड़े कम हो गए। बाप दादा ने आज 80% संतुष्ट मणि के लिए छुट्टी दी है, तो जो समझ से 80% तो है वो हाथ उठाएं। अच्छा, उसमें सब आ जाएंगे। लेकिन संतुष्ट मणि किसको कहेंगे, उसकी क्या क्वालिफिकेशंस होगी, कैसे बने हम संतुष्ट मणि, वो आज बाबा ने मुरली में सुनाया है। तो ये वरदान जो बाबा हमें संतुष्ट मणि का देते हैं, तो ये कैसे फलीभूत हो, उसके लिए भी बाबा ने युक्तियां बताई है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 12/4/2026 है और ये मुरली रिवाइज कर रहे हैं 30/11/2009 की, 2009 और अभी 2026। बाप व सर्व का प्रिय बनने के लिए संतुष्ट मणि बन हर परिस्थिति के प्रभाव से मुक्त रहो। किसको कहेंगे संतुष्ट मणि, जो हर प्रभाव से, हर परिस्थिति के प्रभाव से वो मुक्त है। अब ये अपने आप को देखो, चेक करो, कोई भी परिस्थिति आए मैं उस परिस्थिति के प्रभाव के वश तो नहीं हो जाता हूं। तो बाप व सर्व के प्रिय बनने के लिए संतुष्ट मणि बन हर परिस्थिति के प्रभाव से मुक्त रहो। उसकी युक्तियां भी बाबा ने बताई है, तब संतुष्ट मणि कहला सकेंगे। और उसके लिए बाबा ने होमवर्क भी दिया है, क्या युक्तियां हैं वो अपनाओ और उन युक्तियों के आधार पर चलो। ये होमवर्क भी बाबा ने दिया है। आज चारों ओर के संतुष्ट आत्माओं को देख रहे हैं। संतुष्ट मणियां चारों ओर अपनी मणि की चमक फैला रही है। मणि होंगी तो चमक तो अपनी फैलाएगी ना, तो संतुष्टता की चमक फैलानी भी चाहिए, तब कहला सकेंगे संतुष्ट मणि। संतुष्ट मणियां चारों ओर अपने मणि की चमक फैला रही है। सबसे बड़े से बड़ी स्थिति है ही संतुष्टता की। अब सबसे बड़ी स्थिति संतुष्टता क्या है, सारे श्रृंगार का ताज है। अब सारा श्रृंगार किया हुआ हो पर ताज नहीं है तो भी राजा तो नहीं कहलाएगा ना। तो इसीलिए संतुष्टता सबसे बड़ी से बड़ी स्थिति है। सदा संतुष्ट सभी को प्रिय भी लगते हैं, अब जिसके अंदर में कोई आसक्ति है, इच्छाएं है, चाहिए चाहिए चाहिए, वो प्रिय थोड़ी लगेंगे। सदा संतुष्ट सभी को प्रिय लगते हैं, और बाप को तो प्रिय है ही है, है ना। छोटा बच्चा कहीं जाता अपने माँ बाप के साथ, अब वो देखता है कई चीजें, कहेगा मम्मी ये चाहिए, मम्मी ये चाहिए, तो माँ बाप समझाते, नहीं बेटा ऐसे नहीं मांगा जाता, ऐसे नहीं चाहिए, ये हमारा नहीं है, हम इसको नहीं ले सकते हैं, तो समझाएगा संतुष्ट रहो।
क्लास में सेवाधारी माताएं बैठी है, हाथ उठाए। सभी पांडव भवन के सेवाधारी माताएं, आप सभी का आह्वान हो रहा है, सभी संतुष्ट मनी आत्माएं अभी आप जाकर के टोली किचन में सेवा करते करते मुरली सुनेंगे। और भी कोई टीचर्स बहने अथवा शांतिवन से आई हुई कोई और माताएं, पार्टी वाली माताएं, जो भी जाना चाहते हाथ उठाए। कौन जाना चाहते हाथ उठाए, उठो उठो, थोड़ी आवश्यकता है सेवा की, टोली किचन में जाएंगे। उठो उठो, जो हाथ उठा रहे हो तो उठो। सभी टोली किचन में जाएंगे, वहां बड़े स्क्रीन पे टीवी चल रहा है, उसमें मुरली सुन भी सकते हैं और सेवा भी कर सकते हैं। धन्यवाद।
तो सदा संतुष्ट सभी को प्रिय लगते हैं, बाप को तो प्रिय है ही है। सदा संतुष्ट वही रह सकता है जिसको सर्व प्राप्तियां हैं। प्राप्तियां नहीं होगी तो संतुष्ट नहीं रह सकेगा। अब हमारी प्राप्तियां कौन सी है, कोई जरूरी नहीं है कि सर्व प्राप्तियां हमें हो दुनिया भर की। सर्व प्राप्तियां हो ये आवश्यकता तो है नहीं ना, परंतु फिर भी हम संतुष्ट कैसे रह सकते हैं, क्योंकि बाबा ने तो हमें कितने खजाने दिए, उन खजानों में हम ऐसे संतुष्ट रहते हैं कि हमको और कुछ नहीं चाहिए। तो वो बाबा समझा रहे हैं, सदा संतुष्ट वही रह सकता है जिसको सर्व प्राप्तियां हैं। प्राप्तियों का आधार भी संतुष्टता है। प्राप्तियां है तो संतुष्टता है, तो प्राप्तियों का आधार भी संतुष्टता है। संतुष्टता है माना सब प्राप्तियां हैं, दोनों उत्परोत है। तो संतुष्ट वही रह सकता है जिसको सर्व प्राप्तियां हैं। प्राप्तियों का आधार संतुष्टता है, इसलिए ऐसी आत्माएं सर्व ब्राह्मण आत्माओं को प्रिय है, जो सदा संतुष्ट है, सदा अपने को भरपूर समझते हैं, प्राप्ति स्वरूप समझते हैं। सर्व प्राप्तियां अर्थात सदा संतुष्ट। दुनिया में कितने लोग हैं, उनको सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अगर उनसे पूछते ना, आपके पास तो सब कुछ है, कुछ कमी नहीं है, तो भी आप जीवन में संतुष्ट हो, तो क्या जवाब देते हैं, बहन जी सब कुछ है परंतु शांति नहीं है। तो अभी शांति नहीं है तो असंतुष्टि हुआ ना, चाहे सब कुछ उसको प्राप्त है। तो शांति फिर भगवान से मांगते हैं, शक्ति भगवान से मांगते हैं, वो मनुष्य तो नहीं दे सकता है, इसलिए मांग तो सदा रहती है, चाहे कितनी भी उनकी प्राप्ति हो, उनको कुछ कितना भी मिल जाए, लेकिन कुछ न कुछ जरूर उनको चाहिए। और बाबा के बच्चे शांति मांगेंगे क्या, थोड़ी बहुत शांति बाबा से मांगेंगे नहीं, क्यों नहीं मांगेंगे, क्योंकि शांति तो मेरा स्वधर्म है। आत्मा ने समझ लिया शांति तो मेरा स्वधर्म है, तो शांति भी मांगने की जरूरत नहीं है, शक्ति भी मांगने की जरूरत नहीं। बाबा के सामने बैठ जाओ, वो शक्ति की किरणें आपको मिलती रहेगी, आप अधिकारी बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं, प्राप्तियों का आधार संतुष्टता है, इसलिए ऐसी आत्माएं सर्व ब्राह्मण आत्माओं को प्रिय है। सर्व प्राप्तियां अर्थात सदा संतुष्ट। संतुष्ट आत्मा का वायुमंडल में भी प्रभाव पड़ता है, पता चल जाता है ये व्यक्ति सदा संतुष्ट रहता है, उसकी आंख कहीं भी नहीं डूबती है। संतुष्ट आत्मा का वायुमंडल में भी प्रभाव पड़ता है और सर्व प्राप्तियां हैं परमात्मा की देन। तो जिससे कहो ना कि आपको तो सब प्राप्तियां, तो यही कहेंगे भगवान की दया से सब कुछ है मेरे पास, तो भगवान की देन है मेरे पास सब कुछ, परंतु शांति नहीं है। अब शांति भी तो भगवान की देन है ना, और वो बाबा कहते हैं आपके पास ही है। तो सर्व प्राप्तियां हैं परमात्मा की देन, परमात्मा बाप द्वारा सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व खजाने प्राप्त की हुई आत्मा सदा संतुष्ट रहती है, शांति है, और भले और कई बात चीजें नहीं है तो भी संतुष्ट आत्मा है। इसलिए दुनिया में भी कहते हैं कि आवश्यकता तो रोटी कपड़ा मकान ही है बस, और तो कुछ नहीं है, बाकी तो सब है हमारी इच्छाएं, रोटी कपड़ा मिल जाए तो तृप्ति होनी चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। लेकिन फिर भी संतुष्ट क्यों नहीं है, क्योंकि इच्छाएं बहुत है दुनिया की। तो बाबा कहते हैं परमात्मा बाप द्वारा सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व खजाने प्राप्त की हुई आत्मा सदा संतुष्ट रहती है। संतुष्ट आत्मा की स्थिति सदा प्रगतिशील रहती है, वो आगे ही बढ़ती जाएगी संतुष्ट आत्मा। परिस्थिति संतुष्ट आत्मा के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती है, क्योंकि जहाँ संतुष्टता है वहाँ सर्व शक्तियां, सर्व गुण स्वतः ही आते हैं। अब ये भी ओतप्रोत है, ज्ञान गुण शक्तियां तीनों है तो संतुष्ट है, और वो आत्मा संतुष्ट है तो वहां ज्ञान गुण शक्तियां सब अपने आप आती है। तो वहां सर्व शक्तियां सर्व गुण स्वतः ही आते हैं। एक संतुष्टता अनेक गुणों को अपना लेती है, ये भी ये रिसर्च करना है। एक संतुष्टता अपने सारे गुणों को अपना लेती है। तो हरेक अपने से पूछे कि मैं सदा संतुष्ट आत्मा रहती हूँ। संतुष्ट आत्मा सदा सर्व के बाप के समीप और समान स्थिति में रहती है। लेकिन इस स्थिति में रहने के लिए क्या चाहिए, सदा संतुष्ट रहने के लिए क्या चाहिए? बाबा कहते हैं सदा इस स्थिति में रहने के लिए बहुत साक्षी दृष्टा अवस्था चाहिए, साक्षी दृष्टा अवस्था चाहिए, त्रिकालदर्शी अवस्था चाहिए। अब इस पर भी विचार सागर मंथन करना होगा कि सदा संतुष्ट रहने के लिए साक्षी और दृष्टा अवस्था, त्रिकालदर्शी अवस्था कैसे आती है। हाँ, उसके लिए वो चाहिए, तब साक्षी तब संतुष्ट रह सकते हैं। हर कर्म त्रिकालदर्शी अर्थात हर बात में तीनों कालों को परख फिर कर्म करने वाले, इसके लिए दो बातें आवश्यक है। दो बातें आवश्यक है, कौन सी? वो दो बातें हैं संबंध और संपत्ति, संबंध और संपत्ति। अब संबंध और संपत्ति है तो मनुष्य संतुष्ट रह सकता है, संबंध अच्छे हैं, संपत्ति भी बहुत है तो संतुष्ट है। अब बाबा उसको बेहद में लेते हैं, संबंध भी अविनाशी और संपत्ति भी अविनाशी। वहां दुनिया में संबंध भले होंगे लेकिन हमेशा डर है कहीं हमको छोड़ के न चला जाए, कहीं हमसे दूर न चला जाए। संपत्ति के लिए भी डर है, पता नहीं आज है कल रहेगी या नहीं रहेगी। और बाबा ने जो हमें संबंध बताया है, संपत्ति बताई है, वो तो अविनाशी है। तो बाबा कहते हैं संबंध भी अविनाशी, संपत्ति भी अविनाशी, वो प्राप्त होता है अविनाशी बाप द्वारा। जब अविनाशी संपत्ति और संबंध प्राप्त हो जाता है तो आत्मा सदा संतुष्ट और बाप की सर्व आत्माओं की अति प्रिय बन जाती है। कोई भी परिस्थिति माया के रूप में आती है तो घबराते नहीं है। बाबा के साथ मेरे सर्व संबंध है, घबराना क्या। हाँ, बाबा से मुझे सर्व प्राप्ति है तो घबराना क्या। तो फिर बाबा कहते हैं, कोई भी परिस्थिति माया के रूप में आती है तो घबराते नहीं हैं, ऐसे महसूस करते हैं जैसे बेहद के पर्दे पर, वो परिस्थिति जो आई वो बेहद के पर्दे पर मिकी माउस का खेल चल रहा है। मिकी माउस क्या करता है, कभी कोई चीज उठा लेता है, कभी कोई चीज फेंक देता है, क्या क्या करता रहता है, पर हम कैसे देखते रहते हैं। तो ये मिकी माउस का खेल चल रहा है, परेशान नहीं होते हैं, मिकी माउस का खेल देख मनोरंजन करते हैं। तो माया के भिन्न भिन्न रूप भिन्न भिन्न मिकी माउस के रूप में अनुभव करते हैं। जो संतुष्ट आत्मा है उसको तो सब कुछ मिकी माउस का ही खेल चल दिखाई देता है। ऐसी स्थिति का अनुभव बाप द्वारा सर्व को प्राप्त करना ही है और किया भी है, ऐसे नहीं कि नहीं किया है, और करना भी है। बाप दादा देखते हैं निर्भय एकाग्र बुद्धिवन विजयी आत्माएं कोई भी परिस्थिति में डगमग नहीं होती। निर्भय एकाग्र बुद्धिवन विजयी आत्माएं कभी भी परिस्थिति में डगमग नहीं होती। जो बाप की हर बच्चे में शुभ आशा है कि हर बच्चा सदा विजयी बन बाप को अपना विजय का स्वरूप दिखाए। हम सब विजयी आत्माएं हैं तो बाबा को वो विजयी स्वरूप हम दिखाएं। तो हरेक अपने से पूछे, मैं कौन। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि कभी 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 का शब्द समय प्रमाण अभी ब्राह्मण डिक्शनरी से समाप्त कर दो। कभी कभी नहीं, सदा। बाबा फॉरेनर्स को कहते हैं समटाइम समटाइम, ये बहुत आदत है सबको कहने की, समटाइम समथिंग समटाइम। बाबा कहते कभी कभी, ये आदत छोड़ दो, डिक्शनरी से समाप्त कर दो। जब बाप से सदा का वर्षा लेना है तो हर प्राप्ति सदा प्राप्त हो, क्योंकि बाप के दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले आप आशाओं के दीपक हो। उनके संकल्प में भी कभी कभी शब्द आ नहीं सकता। क्यों कभी कभी शब्द नहीं आ सकता है, सदा सदा संतुष्ट, सदा भरपूर, सदा विजयी, तो कभी कभी नहीं आ सकता शब्द। क्यों, सदा बाप के साथ और बाप के साथी है। तो बाबा सदा साथ है, सदा साथी है, फिर कभी कभी क्यों। साथ रहने वाले भी और साथी बन विश्व परिवर्तन का कार्य करने वाले। बाबा हमारे साथ भी है और साथी भी है। तो बोलो, ये सदा का वरदान बाप दादा द्वारा प्राप्त कर लिया है ना। ये तो जन्म लेते ही बाप दादा हर बच्चे को सदा यही वरदान देते हैं। जब जन्म लिया तो बाबा का कौन सा वरदान मिला था, जन्म लेते ही यज्ञ में हमारी बहनें जब बाबा की को समर्पित हो गई तो बाबा ने सबसे पहला कौन सा वरदान दिया, कौन सा वरदान दिया, योगी भव पवित्र भव, पवित्र बनो योगी बनो। ये वरदान सबको दे दिया और सब ने ये प्रतिज्ञा कर ली कि हम पवित्र और योगी बनेंगे। पर जैसे ही ये प्रतिज्ञा की हंगामा चालू हो गया। हाँ, ये छोटी छोटी बच्चियां, इन्होंने ऐसे क्या क्या प्रतिज्ञा कर ली, अभी तो उन्होंने दुनिया ही नहीं देखी। हाँ, तो पवित्र बनेंगे योगी बनेंगे, तो ऐसे कैसे होगा। तो विरोध किया बाबा का, तो बाबा ने क्या कहा, बच्चे ये मैंने नहीं कहा, ये तो भगवान ने कहा। उसने भगवान ने सबसे प्रतिज्ञा ली, मेरे से भी ली, क्योंकि बाबा भी तो परिवार में ही रहते थे। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बाप दादा हर बच्चे को सदा यही वरदान देते हैं, सदा योगी भव पवित्र भव। उस वरदान द्वारा जो भी प्राप्तियां होती है वो सदा के लिए होती है, कभी कभी के लिए नहीं। तो सभी बच्चे सदा के अधिकारी हैं, क्योंकि बाप का हर बच्चे से, चाहे लास्ट बच्चा है लेकिन बाप को हर बच्चे से दिल का प्यार है। क्योंकि जो बड़े बड़े लोग हैं अपने को समझदार समझते हैं, वो भी बाप को पहचान नहीं सके, लेकिन बाप दादा के लास्ट बच्चे ने बाप को पहचान लिया, दिल से कहते हैं मेरा बाबा। हाँ, दिल से कहते हैं मेरा बाबा। इसलिए बाप का हर बच्चे से अविनाशी प्यार है, इसलिए हर बच्चे को बाप का वरदान है। बच्चे चाहे नंबर वार है, सब एक जैसे नहीं है, चाहे नंबर वार है, लेकिन बाप दादा रोज एक ही समय एक ही वरदान सभी बच्चों को इकट्ठा देते हैं। बाप दादा का हर बच्चा नंबर वार भले है, लेकिन मेरा बाबा कहा तो हर रोज वरदान के अधिकारी बन गया। हर एक बच्चे को, चाहे कहाँ भी रहते हैं, इंडिया में रहते हैं या फॉरेन में रहते हैं, लेकिन वरदान सभी को एक ही बाप का मिलता है, और वरदान को प्राप्त कर खुश भी होते हैं। हर मुरली में भी बाबा का वरदान आता है, तो वरदान को देख खुश भी होते हैं। लेकिन दो प्रकार के बच्चे हैं, खुश तो होते हैं लेकिन दो प्रकार के बच्चे हैं। एक बच्चे वरदान को देख खुश जरूर होते हैं, लेकिन आगे नंबर कौन लेते हैं, केवल खुश होना ही तो नहीं है ना, आगे नंबर वही लेते हैं जो सिर्फ वरदान को देख खुश नहीं होते। आज बाबा का वरदान क्या था, तो बस याद आ गया और खुश हो गए। बाबा कहते केवल वरदान को देख खुश नहीं होते, केवल वर्णन नहीं करते कि यह मेरा वरदान है, लेकिन वरदान को फलीभूत करते हैं, प्रैक्टिकल जीवन में लाते हैं। अब किसके पास बीज तो बहुत अच्छा है लेकिन धरनी में डाला ही नहीं है, तो वो बीज कैसे काम करेगा। धरनी में डाले, उसको धूप दे, पानी दे, तब तो वो फलीभूत होगा। अब बाबा का वरदान मिल गया, बस वो सुन करके खुश नहीं होना है। तो बाबा कहते हैं तो केवल देखकर खुश नहीं होते, वर्णन नहीं करते ये मेरा वरदान है, लेकिन वरदान को फलीभूत करते हैं, वरदान से लाभ लेकर वरदान का फल निकालते हैं। वरदान से, हाँ बाबा कहते हैं वरदान कैसे, वरदान का फल को फलीभूत करते हैं, बीज को फलीभूत नहीं करे, फल नहीं निकले तो सिर्फ खुशी होती है। अब फलीभूत किया ही नहीं, डाला ही नहीं धरनी में, तो वो खुशी भी कायम थोड़ी रहेगी, सिर्फ खुशी होती है। वरदान से फल निकालने के लिए क्या करना होता है, वरदान रूपी बीज से फल निकालने के लिए क्या करना होता है। कोई भी बीज होता है उसका फल निकालने के लिए उनको पानी और धूप चाहिए, तभी फल निकलता है। तो यहाँ भी हर बच्चे को जब वरदान का फल निकालना है, जिससे विस्तार होता जाए, अपने ही मन में वरदान के फल द्वारा वृद्धि होती जाए, तो यहाँ भी बाप कहते हैं कि वरदान का फल निकालने के लिए बार बार वरदान को स्मृति में लाओ, बार बार, पहली बात वरदान को स्मृति में लाओ, स्मृति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहो। अब बाबा ने मुझे कहा आप होली हंस हो, समझो, अब होली हंस हूँ बाबा ने मुझे कह दिया, तो मैं सचमुच होली हंस हूं। होली हंस की विशेषता क्या होती है? गुण चुगना है ना, क्षीर लेना, नीर फेंकना, मोती चुगना, कंकर फेंकना। तो मैं सचमुच वो होली हंस हूं, सबके गुण देखता हूं या किसका अवगुण भी देखता हूं? तो अवगुण देखता हूं तो होली हंस तो नहीं हुआ। तो वो अपनी अपने साथ अपनी टेस्ट करते रहना, जो बाबा ने वरदान दिया है उसका मैं स्वरूप हूं। तो वही बाबा कहते हैं, बार बार सिमरन नहीं लेकिन स्मृति, ये है पानी देना, और स्वरूप में स्थित होना ये है धूप लगाना। तो ये फलीभूत होने से स्वयं में भी बहुत शक्ति बढ़ती है और दूसरों को भी उस फल द्वारा शक्ति का अनुभव करा सकते हैं। बाप दादा अभी क्या चाहते हैं? क्योंकि बाप दादा कुछ समय से लेके समय की वार्निंग दे रहे हैं। हर बच्चे की पढ़ाई की रिजल्ट का समय अचानक आना है। रिजल्ट का समय कैसे आएगा? अचानक शरीर छूट जाएगा, ये रिजल्ट है ना। तो हर बच्चे की पढ़ाई की रिजल्ट का समय अचानक आना है। हाँ, वो विनाश तो बाद की बात, लेकिन अपने शरीर का भी तो अंत कभी भी आ सकता है ना। तो हर बच्चे की पढ़ाई की रिजल्ट का समय अचानक आना है, इसके लिए सदा एवर रेडी। साथ साथ बाप दादा ये भी इशारा दे रहे हैं कि अभी समय है उड़ती कला के तीव्र पुरुषार्थ का। उड़ती कला के तीव्र पुरुषार्थ का समय है। चल रहे हैं ये नहीं, उड़ रहे हैं। साधारण रीति से अपनी दिनचर्या व्यतीत करना, अब वो समय कॉमन पुरुषार्थ का गया। इसलिए बाप दादा इशारा दे रहे हैं, हर सेकंड हर संकल्प चेक करो, मानो अपना तीव्र पुरुषार्थ न कर एक घंटा साधारण पुरुषार्थ में रहे, और एक घंटे में ही अचानक अगर फाइनल पेपर का टाइम आ गया, शरीर छूट रहा है, हाँ, फाइनल पेपर का टाइम आ गया, तो अंतवती सो गति, वो एक घंटे का साधारण पुरुषार्थ कितना नुकसान कर देगा। हम ऐसे गपशप में लगे हुए हैं, ऐसे ही बातें करते इधर की उधर की, अचानक हार्ट फेल हो गया, शरीर छोड़ दिया, तो बताओ। बाबा कहते हैं, अंतमति सो गति, वो एक घंटे का साधारण पुरुषार्थ कितना नुकसान कर देगा। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को हर संकल्प हर सेकंड समय के महत्व को समय प्रति समय इशारा दे रहे हैं। हलचल के समय अचल रहने का पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थी ही कर सकता है। हलचल में अचल रहने का पुरुषार्थ कौन कर सकता है? तीव्र पुरुषार्थी ही कर सकता है। साधारण पुरुषार्थी एवर रेडी बनने में समय लगा देगा, और बाप दादा ने कहा है कि सेकंड में बिंदी अर्थात फुल स्टॉप, सेकंड में बिंदी अर्थात फुल स्टॉप। अगर तीव्र पुरुषार्थ नहीं होगा तो क्या होता है? बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं और बिंदी नहीं लगाई, तो तीव्र पुरुषार्थ तो हुआ नहीं, तो क्या होता है? अनुभवी तो हो ना, फुल स्टॉप के बजाय क्वेश्चन मार्क तो नहीं बन जाएगा। क्या, क्यों, कौन, कहाँ, कैसे, ये क्वेश्चन आ जाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं फुल स्टॉप, पूर्ण विराम के बजाय क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह तो नहीं बन जाएंगे। बिंदी तो कितनी सहज है और क्वेश्चन कितना टेढ़ा बांका है। फुल स्टॉप तो फुल स्टॉप हो जाए, एक सेकेंड, कॉमा की मात्रा भी नहीं, अर्ध विराम भी नहीं, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, उसी समय विराम, अधूरा विराम भी नहीं, पूर्ण विराम, कॉमा की मात्रा भी नहीं हो, आश्चर्य की मात्रा भी ना हो, है ये क्या हो गया, हाँ ये मात्रा भी ना आए, क्या करूं ये सोचने का भी समय नहीं मिलेगा। तो कोई भी बच्चा ये सोच नहीं सकता है कि इतना फास्ट पुरुषार्थ करना ही पेपर में पास होना है। हाँ ये कोई भी बच्चा ये सोच नहीं सकता कि इतना फास्ट पुरुषार्थ करना ही पेपर में पास होना है। इसलिए क्वेश्चन मार्क नहीं, अर्ध विराम नहीं, आश्चर्य चिन्ह नहीं, बस पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। बाप दादा देखते हैं अभी भी कारण अकारण है, क्यों क्या कैसे ऐसे वैसे, ये कोई कोई बच्चों के रोज के चार्ट में दिखाई देता है। बहुतों के चार्ट में बाप दादा ने देखा कि वेस्ट थॉट्स की लहर समय ले लेती है, ले लेती है क्या, व्यर्थ संकल्प मन में बहुत चलते हैं, चिंता कोई न कोई रहती है, तो वेस्ट थॉट्स की लहर समय ले लेती है, और वेस्ट की रफ्तार तो ऐसी तीव्र होती है जो साधारण संकल्प का एक घंटा और फास्ट संकल्प का एक मिनट। इसीलिए आज ये देख रहे थे कि सबकी प्रिय बाप दादा की प्रिय संतुष्ट आत्माएं कौन कौन हैं, क्योंकि संतुष्ट होंगे तो क्वेश्चंस नहीं उठेंगे, प्रश्न भी नहीं उठेगा, आश्चर्य भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। संतुष्ट माना संतुष्ट, धीरज माना धीरज। संतुष्ट आत्मा के संकल्प में भी ये क्यों क्या की भाषा स्वप्न में भी नहीं आएगी, क्योंकि उस आत्मा को विशेष तीन बातें तीन बिंदियां याद रहती है। कौन सी तीन बिंदियां? आत्मा, परमात्मा और ड्रामा, ये तीन बिंदियां उसको सदा याद रहती है। तीन ही समय पर कार्य में लगा सकती है, क्योंकि ऐसे समय पर सर्व शक्तियों का खजाना आवश्यक है। तीन बिंदियां लगाने के लिए सर्व खजानों का सर्व शक्तियों का खजाना आवश्यक है, और मास्टर सर्वशक्तिवान वो है जो जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करे वो हाजिर हो जाए। चाहिए सही शक्ति और आ जावे सामना करने की शक्ति। चाहिए सहन शक्ति, कोई गुस्सा कर रहा है और मुझे सहन करना, उस समय हम भी गुस्सा करना शुरू कर दे, सामना करना शुरू कर दे, तो और आ जावे सामना करने की शक्ति। तो है शक्ति लेकिन उस समय काम की नहीं है, वो सामना करने की शक्ति काम की नहीं है। तो सर्व खजानों की चाबी है तीन बिंदियां, आप बाप और ड्रामा। तो बाप दादा का एक संकल्प है, बताएं अब बाबा ने ये कार्य दिया, इसको होमवर्क के रूप में बाबा ने दिया है, तो ये बाबा का संकल्प है। तो बाप दादा का एक संकल्प है, बताएं करना पड़ेगा, जो करने के लिए तैयार है वो हाथ उठाओ, तीन बिंदियां एक सेकंड में लगा देना, एक सेकंड में। हाँ बाबा कहते हैं कि जो करने को तैयार है वो हाथ उठाओ, करना पड़ेगा। अच्छा सभी हाथ उठा रहे हैं, मन का हाथ उठा रहे हो या शरीर का हाथ उठा रहे हो? मन का हाथ तो पक्का होता है। बाप दादा समय प्रमाण हरेक बच्चे से ये शुभ आश रखते हैं कि 15 दिन के बाद फिर बाप का मिलन होता है, बाबा का मिलन हर 15 दिन में होता है। तो ये जो 15 दिन बीते उसमें ये विशेष अभ्यास करो ट्रायल के लिए, कुछ भी हो जाए तीन बिंदी एक सेकंड में वो तीन बिंदी लग जाए, तो उसमें ये विशेष अभ्यास करो ट्रायल के लिए। रहना तो सदा है, हर वक्त तीन बिंदी लगनी चाहिए, लेकिन 15 दिन की ट्रायल करो और अपने अपने कनेक्शन वाले सेंटर्स को भी कराओ। चक्कर लगा के फोन करके उनको याद दिलाओ कि होमवर्क कर रहे हो, हर वक्त तीन बिंदी लगा रहे हो। होमवर्क क्या है? इजी है। हर एक भिन्न भिन्न सर्कमस्टांसेस बातों से क्रॉस तो करते ही है। कितनी बातें आती है हमारे सामने सामने आती है तो क्रॉस तो करते ही है, लेकिन ये 15 दिन हर एक को संकल्प वाणी और कर्म में कम से कम 80% मार्क्स लेनी है। क्या, क्यों, कौन, कब, कहाँ, कैसे, ये प्रश्न समाप्त, आश्चर्य चिन्ह समाप्त। हाँ, प्रश्न चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह, अर्ध विराम, कौमा, ये सब खत्म। हाँ, तो बाबा कहते कम से कम 80% मार्क्स लेनी है। फिर भी बाप दादा 20% छुट्टी देते हैं, है मंजूर? मंजूर है, देवे छुट्टी, ये काम देवे। अच्छा, 15 दिन माया भी सुन रही है, माया सुन रही है, बातें तो आएंगी, बातों को नहीं देखना, पास होना है ये याद रखना। 15 दिन कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर एक सच्ची दिल साफ दिल से स्वप्न में भी संकल्प वाणी और कर्म में भी पास होके दिखाना, फुल स्टॉप। हो सकता है, फिर पूछते बाबा, हो सकता है? टीचर्स बताओ, हो सकता है? 15 दिन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बाप दादा ट्रायल के लिए कह रहे हैं कि संकल्प में भी वेस्ट नहीं, संकल्प भी वेस्ट, एक सेकंड भी नहीं आए। युद्ध नहीं विजयी, वेस्ट आया तो फिर अब फिर फुल स्टॉप लगा रहे, फिर आया फिर फुल स्टॉप लगाए तो युद्ध हो गया ना, वो युद्ध नहीं विजयी। 15 दिन के फुल विजयी, मुश्किल है या इजी है? इजी है तो हाथ उठाओ, सहज है तो हाथ उठाओ। 15 दिन कम से कम 3 बिंदी 1 सेकंड में लगा लो, देखो सब नहीं उठा रहे, तो फिर से हाथ उठाओ, थक गए क्या? हाँ, तो बाबा कहते हाँ इजी है, तो बाप दादा ये 15 दिन की रिजल्ट देखेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे। 15 दिन तो कोई भी कर सकता है ना, कर सकते हैं ना। मधुबन वाले, मधुबन वाले हाथ उठाओ, ये आगे आगे मधुबन बैठा है। शांतिवन में तो सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के भाई वहाँ बैठते हैं ना, तो ये मधुबन वाले आगे बैठे हैं, बहुत अच्छा है। फॉरेनर्स या इंडिया वाले सभी को करना है, गांव वाले या बड़े शहर वाले सबको 15 दिन का ये रिकॉर्ड रखना है। क्या, क्यों का क्वेश्चन न उठे, क्या करें, बात ही ऐसी हुई, ये नहीं बताना। 80% लेना ही है, फिर भी बाप दादा हल्का कर रहा है, 20% छोड़ रहा है, क्योंकि बाप दादा देखते हैं कि कहां कहां चलते चलते माया अलबेलेपन और आलस्य में ले आती है। रॉयल आलस्य, रॉयल आलस्य कैसे आता है? ये था ना, ये था, हाँ ये था इसलिए ऐसे हुआ, ये हुआ ना, ये किया ना इसलिए ऐसे मैंने किया, तो ये अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि मैं ठीक हूँ, भले मैंने अपना टाइम इसमें वेस्ट किया। तो बाबा कहते ये था ना, ये था ना, ये रॉयल आलस्य, अलबेलेपन का अलबेलापन, ये तीव्र पुरुषार्थ में कमी डालता है, क्योंकि अभी बाप दादा सभी जो भी स्टूडेंट्स है, हर एक स्टूडेंट को अभी पहले ये 15 दिन की रिहर्सल करा के कुछ समय ऐसे ही अभ्यास कराना चाहते हैं। चलो कोई भी बात हो गई उस समय बिंदी, न प्रश्न न आश्चर्य न थोड़ा रुका, नहीं बिंदी। जो सभी से हाथ उठवाए, एवर रेडी तो सभी हाथ उठा सके, इसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए। एवर रेडी बनना है तो उसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए, इसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए, इसलिए अभी ये थोड़ा सा अभ्यास कराते हैं। अंत के समय अचानक होना है, उस समय ये थोड़ी पूछेंगे अरे ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, कोई प्रश्न नहीं पूछ सकेंगे, आश्चर्य नहीं खा सकेंगे, बस फुल स्टॉप बिंदी। अभी ये थोड़ा सा अभ्यास कराते हैं। अच्छा, पहली बार कितने आए हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा है, बहुतों ने हाथ उठाया, पहली बार आए हैं। आपको बाप दादा के सामने आने के दिन का बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। बाप की नजर बच्चों पर पड़ी और बच्चों की नजर बाप पर पड़ी। बाबा ने बच्चों को देखा और बच्चों ने बाबा को देखा तो नजर पड़ी, तो बहुत बहुत बधाइयां हैं। अच्छा, और केक तो नहीं है, अब बधाइयां तो दी पर केक तो नहीं है, लेकिन खुशी का केक खा लो। फर्स्ट पहली बार वालों को खुशी का केक का खा लो। अच्छा है, सभी देरी से आए हो लेकिन फास्ट जाके नंबर आगे ले सकते हो, इसलिए बाप दादा की तरफ से और सर्व आपके साथी भाई बहनों का सबका मुबारक हो। पहली बार आने वालों को मुबारक हो, ऐसा मिसाल होगा जो लास्ट आने वाले भी फास्ट जाकर फर्स्ट लाइन में आ सकते हैं। लास्ट भी आए हैं लेकिन फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकते हैं, ये भी बाबा कहते कोई ना कोई मिसाल होंगे। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपक, क्यों क्या की भाषा से न्यारे रहने वाले, सदा एक रस, सदा एक बाबा दूसरा न कोई, बाप में ही विशेष जीवन के तीन संबंध, बाप शिक्षक सतगुरु अनुभव करने वाले, बाप से वर्षा टीचर से पढ़ाई का वर्षा, और सतगुरु से वरदानों का वर्षा प्राप्त करने वाले पदम गुणा भाग्यवान हर बच्चे को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब दादियों से, दादी प्रकाशमणि तो नहीं थे 2009 में, परंतु दादी जानकी, दादी चंद्रमणि, ये सब दादियां थी, तो कई सेवा। दादी चंद्रमणि नहीं थी, वो कब गई? अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर भी और भी कई दादियां थी। तो इस बार चारों ओर सेवाओं के प्रोग्राम बहुत अच्छे हुए हैं, तो सब बड़ी बहनें भी होंगी वहाँ, तो सब आ गए हैं, और विदेश की भी बड़ी बहनें होंगी तो वो भी बाबा के सामने हैं। तो इस बार चारों ओर सेवाओं के प्रोग्राम बहुत अच्छे हुए हैं, सभी ने सभी को मदद भी अच्छी की है, किसी को सोच करना नहीं पड़ा कि किसी को सोच नहीं करना पड़े कैसे करे, करना ही है। एक दो की मदद से सभी प्रोग्राम अच्छे हुए, आवाज तो फैल गया, संदेश तो मिला, अभी आगे बढ़ो। योग में सभी ने बहुत अच्छी अनुभूति की, किसी ने बाबा को कहा योग में सभी ने बहुत अच्छी अनुभूति की, क्योंकि टॉपिक ही थी ना, वरदान लेना है, उस समय कोई टॉपिक की लहर थी, वरदान लेना है, तो योग के प्रोग्राम से अनुभव किया। अब सेवा का टर्न पंजाब जोन का है, तो पंजाब जोन के सेवाधारियों से, पंजाब को ड्रामा अनुसार ये सन्यासियों महात्माओं की सेवा का चांस अच्छा मिला हुआ है। हमारी प्रेम बहन थी ना, तो प्रेम बहन ने तो बहुत सेवा की सन्यासियों की महात्माओं की, अच्छा मिला हुआ है और कर भी रहे हैं। पंजाब में स्थापना के समय पर जैसे सेवा आरंभ हुई वैसे सहयोगी और वारिस क्वालिटी वाले निमित्त बने। दादी चंद्रमणि अमृतसर में थी उस समय, कितनी बहनें निकली, सारी जो वरिष्ठ हमारी दीदियां हैं वो सब अधिकतर पंजाब से निकली। तो बाबा कहते हैं पंजाब में स्थापना के समय पर जैसे सेवा आरंभ हुई वैसे सहयोगी और वारिस क्वालिटी वाले निमित्त बने। जितना ही हंगामे वाले थे उतने ही शेर क्वालिटी भी निकली। विरोध भी बहुत हुआ था उस समय, लेकिन शेर क्वालिटी की बहनें निकली जो चारों ओर बाबा ने उनको भेजा और इतनी सेवाएं की। अभी पंजाब को क्या करना है, ये विशेषता तो है, शेरे पंजाब बाबा कहते थे, शेरनिया निकली, तो ये विशेषता तो है। अभी पंजाब वाले कोई ऐसा शेर तैयार करें, कोई ऐसा वीआईपी माइक तैयार करें, ऐसा शेर तैयार करें नामी ग्रामी जो सभा में माइक बन अपना अनुभव सुनाए। माइक बड़ा हो छोटा नहीं, जैसे गवर्नमेंट के वीआईपी तो अलग अलग होते हैं लेकिन महात्माओं में भी वीआईपी होते हैं। महात्माओं में भी जो बड़े महात्मा वो वीआईपी होते हैं। ऐसा कोई बड़ा माइक तैयार करो जो अपने अनुभव से औरों को उमंग में लाए। ऐसा कोई निकालो, तैयारी करो। हो सकता है, हाँ ऐसे नहीं कि नहीं हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि आजकल सभी समझते हैं कि साधु संत की सेवाएं तो द्वापर से शुरू हुई। साधु संत की सेवाएं तो द्वापर से शुरू हुई, लेकिन आप समान ऐसे बड़ा गुरु दूसरे को शिष्य को बनावे ऐसा एग्जाम्पल उन्होंने नहीं होता है ना। भले कितने भी बड़े गुरु बन जाए लेकिन अपने जैसा दूसरे को भी बनावे, बाबा कहते ऐसे एग्जाम्पल उन्होंने नहीं होता। और बाप दादा ने अपने से भी होशियार बच्चों को तैयार किया है, अपने से भी बाबा ने बच्चों को होशियार बना दिया है। जो पब्लिक में आते हैं, हाँ इससे बच्चे पब्लिक में आते हैं, साकार में बाबा तो कभी पब्लिक में नहीं गए, बच्चे ही गए पब्लिक में ना। जो अपने से भी होशियार बच्चों को तैयार किया है जो पब्लिक में आते हैं। इसीलिए पंजाब कोई नवीनता करके दिखाओ। वीआईपी तो सब तरफ से आते हैं लेकिन आप ऐसा लाओ जो सभी सुन करके जग जावे, संदेश मिल जाए। हो सकता है, तो पंजाब वालों ने कहा हाँ बाबा हो सकता है, तो बाबा ने कहा देखेंगे, थोड़ा समय तो लगता है लेकिन ऐसा कोई तैयार करके दिखाओ। बाकी वृद्धि तो हो रही है पंजाब में। अच्छा वरदान, बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भव। बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भव। जैसे किसी बड़े के हाथ में हाथ होता है तो स्थिति बेफिक्र व निश्चिंत रहती है। ऐसे हर कर्म में यही समझना चाहिए कि बाप दादा मेरे साथ भी है और हमारे इस लौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है, तो जिम्मेवारी भी उनकी हो जाती है। सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो। बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन ही है। बोझ उतारने और मुश्किल को सहज करने का साधन है बाप का हाथ और साथ। बाप का हाथ और साथ स्लोगन। पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। यह व्यक्ति सारे महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो के अंतर्गत अगर आपसे कोई टक्कर लेता है तो आप उसे अपने स्नेह का पानी दो। वो गुस्सा कर रहा है, डांट रहा है, बहुत कुछ उल्टा सुल्टा बोल रहा है, तो आप उसे अपने स्नेह का पानी दो। आप अपने मधुरता और नम्रता के गुण को छोड़ो नहीं, नम्रता की ड्रेस पहन कर रखो। ये नम्रता ही कवच है जो सेफ्टी का साधन है, संस्कारों की रास मिलाने का सबसे सहज तरीका है। सबसे सहज तरीका है संस्कारों की रास मिलाने का सबसे सहज तरीका है स्वयं नम्रचित और मधुरता संपन्न बन जाओ। दूसरे को श्रेष्ठ सीट दे दो। आप किसी को आगे रखेंगे, आप पीछे नहीं रहेंगे, आप भी आगे ही रहेंगे। दूसरे को श्रेष्ठ सीट दे दो, हर्जा नहीं, आप पहले। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो बाबा को याद करेंगे। तीन बिंदी का होमवर्क बाबा ने दिया है, कम से कम 15 दिन कुछ भी हो जाए 3 बिंदी लगा दो। सब कुछ कार्टून समझ करके स्थिर हो जाओ तो कब तो हलचल में भी अचल रहेंगे।